अल्लाह ताला कहते हैं जवल फितियतु, जबकि उन्होंने जगह पकड़ी है। जो अवा है ना, ये वही है जिसे लफ्ज़ मावा भी है, जन्नतुल मावा, ठिकाना पकड़ना। टेम्परेरीली कहीं जाकर आप अपने बैठने का रहने का कोई इंतज़ाम करते हैं। इन्होंने सोचा कि अगर हम इस मुल्क में रहे तो हम इतना मजबूर कर दिए जाएंगे कि हमें बुत परस्ती इख्तियार करनी पड़ेगी, तो बेहतर है कि हम चले। बास कहते हैं कि ये पहले से नहीं जानते थे एक दूसरे को, लेकिन मकसद की हम आहंगी, सिमिलर गोल्स होने ने इनको मिला दिया। और आप इमेजिनेशन में लाइए उस वक्त के, अगर अखबार हों, बड़े घरों के बच्चे भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, मिल नहीं रहे, किडनैप्ड है, कितनी शह सुर्खियां उस वक्त छपती होंगी। लेकिन एक निकला, दूसरा निकला, वो कहते हैं ना कि तनहा निकले थे लोग, मिलते गए और काफिला बनता गया। यहाँ से पता चलता है कि एक मकसद के लोग तबीयतों के इख्तलाफ के बावजूद भी एक साथ रहेंगे। जब मकसद और गोल फर्क होते हैं तो एक तबीयत के लोग भी साथ नहीं रहते हैं। अगर आज आपका मेरा सबका इस वक्त गोल ये था कि हमने यहाँ आकर ये सुनना है, तो हम पहुँच गए। क्या हम सारे शहर के एक हिस्से से आए हैं? नहीं, डिफरेंट जगहों से है ना। हमारा गोल एक था, हम सब यहाँ पहुँच गए। याद रखिए कि जब तक गोल एक होगा, उसके बाद बाकी काम आसान हो जाते हैं। फिर इसी तरह से जब उन्होंने जगह पकड़ी गार में, और फितिया का लफ्ज़ है ना फतन से है, फतन पीछे भी पढ़ चुके, फाता या इसका रूट है, नौजवान को कहते हैं, जैसे यंग मैन इंग्लिश में आपके, इसी की मोनस होती है फतातुन। और ये फिर गुलाम और लॉन्डी के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगे, और किसी को अपनी तरफ माइल करने के लिए भी ये लफ्ज़ आता है। मैं कोशिश करूंगी कि सुरकाब में बहुत आपको वर्ड एनालिसिस ना दूं, क्योंकि मेरे से लिसनर्स भी हैं तो वो फिर परेशान होंगे, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि कुरान एक ख़जाना है। इसके एक एक लफ्ज़ पे बात की जाए तो बहुत समझ आती है। फरमाए जवल फित भी, बस जब इन नौजवानों ने गार में बना ली, फ़कालू रब्बना, नोट कीजिए दुआओं का सहारा, बड़े घरों का आराम छोड़ा, अपने बाप और अपने खानदान की इज्जत शोहरत को पीछे रखा, उन पे कोई मान नहीं किया, और दुआ के लिए हाथ खड़े कर दिए। ये है ईमान। फकालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा, और मुहैया फरमा हमें अपने पास से रुश्त। अगर एक स्ट्रेच में मानी करूं, जबकि इन नौजवानों ने गार में बना ली और उन्होंने कहा है हमारे रब, तो हमें अता फरमा अपने पास से रहमत, और आसान फरमा दे हमारे लिए हमारे मामलात में आफियत का रास्ता। ये है कामयाबी का नुस्खा। देखिए, मुझे अपने साथियों में किसी की बात याद आई, कहती हैं जितना बड़ा चैलेंज आता है मेरे पास, क्लासेस करने में, कराने में, बहुत कुछ होता है, कहती मेरे लबों पे ये दुआ आती है, और मैंने इस दुआ की बरकतें खुद भी देखी हैं। आपने यहाँ आना है, आपने जाना है, आपने टेस्ट याद करना है, आपने तर्जमा याद करना है, छोटी बड़ी दीनी रस्ते की मुश्किल, इस दुआ को हिफ्ज़ जान बना लीजिए। मैं और आप अल्लाह की रहमत के मुहताज हैं, और इसी को ज़हन में रख के पढ़ा करें, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा को या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। हज़रत आयशा कहती हैं कि जब नबी सल्लम पे हालात तंग होने लगते थे, मुश्किल से मुश्किल वक्त आ जाता था, होता है हर बंदे के साथ, तो आपकी ज़ुबान पे आता था या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। और यहाँ रहमत क्या है? दीन के कामों में आसानी, सहूलत से हो जाए, रुकावटें ना आए, गाड़ी ठीक रहे, बच्चा बीमार ना हो जाए, शौहर परेशान ना हो, मेहमानों को मैं अच्छी तरह टैकल कर लूँ, रास्ते में अगर बर्फ़ आ गई है तो उसके साथ मैं निकल सकूँ। यानी जब आप और मैं अल्लाह पर नज़रें लगाकर उसकी रहमत मांगते हैं, तो वल्ला ही वो रहमत काम करके होती है, काम से बच के नहीं होती। आप कहते हैं मैं बिज़ी हूँ, अल्लाह कहता है बिज़ी रहिए, आपको काम मिलेगा, करने वाले को रहमत मिलेगी। और रहमत क्या है? वह है ये लना, है ये का लफ्ज़ सुना है उर्दू में कभी? मैंने अभी तर्जमे में जान के वो लफ्ज़ बोला था, मुहैया कर। आप कहते हैं फलां चीज़ मुहैया है, अवेलेबल है, मुहैया क्या? आसान, हाँ बेगम ये चीज़ मुहैया है। शौहर कहते हैं अच्छा ये ले आओ, वो है, वो नहीं है, ये है। तो है ये में क्या है? किसी चीज़ का आसानी से मिल जाना। यदि मसलन आप देखिए कि कोई चीज़ आपके बस में नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने मदद की, वो चीज़ आपकी रीच में हो गई, आसान हो गई। है ये लना, दुरुस्तगी करना किसी मामले के असबाब, या मीन्स लिख लीजिए है का मानी, کہ اللہ ریسورسز پیدا کر دے، اللہ گاڑی نہیں ہے گاڑی دے دے، اللہ کو چلانے والا نہیں چلانے والا دے دے، اللہ صحت اجازت نہیں دے رہی تو ہے یہ لنا، اپنی مجبوری کا نام ادھر لکھ رہے کہ اللہ تیرے دین کے رستوں میں، تیرے کاموں کے رستوں میں جو میری مشکلات ہیں اس کو تو آسان کر دے، من امری نا رشدہ، اور اپنے پاس سے مجھے رشد عطا فرما. رشد جو ہوتی ہے نا غی کی ضد ہے، اپوزٹ ہے اس کا، ہدایت کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کس کام کو کیسے کب کہاں کتنا کرنا ہے یہ مجھے سجھا دے. اور یقین کریں یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے نا کہ آپ کو کچھ سوجھ جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشد ہے، اپنے خاص خزانے سے، فضل سے. یہاں تھوڑی سی بات کریں، ریسورس فل لوگ تھے، سب چھوڑ کر آئے نا، غار میں ساتھ کیا لا سکتے ہیں، گاڑی تو نہیں لے کے آئے ہوں گے نا، سیل فون کتنے دن رہتا، چارجر ہی نہ ہوتا ساتھ، چارجر بھی لے آتے تو کیا ہوتا. یہاں لکھیے سارا بھروسہ اس پہ جس کے رستے میں نکلتے ہیں. میں ڈرتے ہوئے ایک جملہ بول سکتی ہوں کہ ہمارا تو اس سے زیادہ بھروسہ اپنے سیل فون پہ ہوتا ہے. ہم سیل فون کے بغیر اب گھر سے باہر نہیں نکلتے، ہمارا دماغ بند ہوتا ہے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، کوئی مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، بھائی بھاڑ میں جائیں یہ ساری چیزیں. اللہ تو مجھے کچھ کرنا ہی نہ، مجھے یاد ہی نہ رہے کہ میرا فون میرے پاس ہے کہ نہیں ہے. یاد رکھیے یہی صورت کا دجل ہے، مادی سہارے اتنے عام ہو جاتے ہیں کہ ایک سے ایک چیز کو پھر ہم اپنی ضرورت بناتے ہیں. میں نے جب چھوٹے بچے 7-8 سال کے بچوں کے ہاتھوں میں فون دیکھے تو ماؤں سے پوچھا کہ یہ کیوں ہیں، کہتی نہیں اصل میں اسکول میں ان سے رابطہ کرنا ہوتا ہے. تو بھائی آپ بھی تو جب اسکول جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ میں نہیں کہتی کہ اس میں اب یہ حلال حرام کی بات ہے، غلط ہے صحیح، لیکن دروازہ تو کھول دیا نا. اب وہ فون صرف آپ کا ماں کا فون تو نہیں سنے گا نا، پھر اس میں سے اس کا دل کرے گا کوئی مجھے اور بھی کرے، پھر میں کروں، پھر وہ کہے گا سادہ نہیں چاہیے، مجھے نیٹ فون چاہیے، فلاں فون چاہیے. توکل اللہ پہ کرے، اور یقین کریں اپنے بچوں کو جتنا نیچر کے قریب پالے اتنا اچھا ہوگا. آرٹیفیشیل دنیا سے ان کو بچائیں. آج آپ کی سائنس بول بول کے کہہ رہی ہے کہ اس سے ریس نکلتی ہیں، اس سے کینسر ہوتا ہے، اس کو سینے پہ نہ رکھو، اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے. آئے دن ویڈیوز مجھے ملتی ہیں، تو آپ کو تو میرے سے زیادہ ملتی ہوں گی، مجھے تو چند لوگ بھیجتے ہیں، آپ کے پاس تو بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن ہمارے بچوں کی آنکھیں، آئی سائٹ، یہ سب کچھ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ کل ایک ماں سے بات ہو رہی تھی، پہلے ہر ماں کی طرح ان کا بھی یہی شکوا تھا، اسکول سے آتے ہیں فون پکڑ لیتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جی ان کو ٹیب چاہیے وہ چاہیے، اور مسئلہ ہی گھر میں ہر وقت یہ پڑا ہوا ہے. کل انہوں نے مجھ سے بات کی، کہنے لگے آپ کو پتہ ہے نے ریسنٹلی کلاسز شروع کچھ کی ہیں، اس میں بچے چاروں دن بزی ہو گئے شام کو، اب جب اسکول سے آئے جلدی کھایا پیا کلاس میں آ گئے، یہاں ہی 3 گھنٹے گزار کے گئے، گھر جا کے تو ایک ہی پڑا ہوگا نا، کھم کے کھائیں اور سوئیں اگلے دن اسکول جانا ہے. کہتی سب سے زیادہ مجھے جو فائدہ ہے اس کلاس میں اپنے بچوں کو ڈال کے ہوا ہے کہ بچوں کے فون اور ٹیبس ختم ہو گئی ہیں، اور بچے خود کہتے ہیں، وہ چھوٹا بچے کی بات وہ کہہ رہا ہے میرے فون میں تجھے فرائیڈے کو ملوں گا، کیونکہ فرائیڈے کو کلاس نہیں ہوتی، مصروف کر دیا اس کو. کیا میں آپ دیکھیں نا، آپ زندہ میرے سامنے موجود ہیں، میں آپ سے بات کرنا پسند کروں گی یا میں یہ سمجھیں کہ نیپکن سے بات کروں گی؟ یہ بچوں کو آلٹرنیٹ ملتا ہے. آپ اپنے بچوں کو جب ٹائم خود دیتے ہیں نا، اور ٹائم دینے کے لیے آپ کہیں گے دیکھا یہی تمہاری مصیبت ہے، میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. ٹائم دینا نہیں پڑتا، وہ آپ لے رہے ہوتے ہیں ان بچوں کا ٹائم. ایشو یہ نہیں ہے اس وقت، جب صرف میں آپ کو یہاں ریسورسز کے اوپر بات اتنی لمبی کھینچ رہی ہوں، آگے جا کے آئے گی بات، اسی صورت میں آپ پڑھیں گے المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، اس دن پھر کچھ باتیں کوشش کروں گی کہ تربیت اولاد کے ناطے سے جو ایک فتنہ ہے ہمارے سر پہ. لیکن آج کے دور کے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ اس آیت کی روشنی میں لکھ لیجیے، ریسورسز کا فتنہ. ہمارے بچے کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، میرے فلاں دوست کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ایسے جوتے میرے پاس نہیں، اس کی جیکٹ ایسی میری نہیں، اس کی ایسی سائیکل نہیں. دیکھیے یہ وہ لڑکے ہیں جو سب کچھ گھر میں رکھنے کے باوجود چھوڑ کے آ گئے. ایمان ایسے ہی فیصلے کراتا ہے کیونکہ نظریں کہیں اور لگی ہوتی ہیں. چلیے اب اس دعا کے اثرات دیکھیے، 1-2-3 کر کے نوٹ کیجیے گا. دعا کیا مانگی تھی؟ آتی نہ ملا دن کا رحمہ، اے اللہ اپنے پاس سے رحمت دے، اور ہے یہ لنا من امرنا رشدا. ملا کیا؟ نمبر 1، فضربنا علی آذانہم فی الکہف، تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر غار میں، سنین عددا، کئی سال کے لیے. جیسے ماں تھپک تھپک کے سلاتی ہے نا، بچے کے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے کہ اس کو آوازیں نہ آئیں، یہ سو جائے. अल्लाह कहते हैं थके हुए थे ना, मेरे रास्तों में निकले थे, मैंने कहा अब सो जाओ। अल्लाह ने कानों पे थपक थपक के उनको सुला दिया। ये नहीं बताया कितना, बस सिनीन आदादा, कई साल, मैनी ईयर्स, बस बहस नहीं की, ज़रूरत नहीं। बहुत सारी फिगर एंड फैक्ट्स में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम फिर असल मकसद को, आप अभी इस वाक्य की जो अंदर की इस खूबसूरती है ना, उसको फील करें। बड़े घरों के बच्चे थे, वहाँ बिगड़ने का डर था, बादशाह के जुल्म में आकर हो सकता है दीन बदलते, कहने लगे निकलते। किसके भरोसे पे गए? रब के। गए जिसका नाम है उसके नाम पे भरोसा है। गए तो क्या हुआ, कोई जगह तो थी नहीं, महल्लात में रहने वाले घर में पहुंच गए। मैंने आपको परसों इंट्रोडक्शन में बताया था, कल भी थोड़ा जिक्र हुआ था, कि ये सूरत आपको मुझे सिखाएगी, ईमान कबूल करने के बाद दो में से एक हालात हो सकते हैं, जो मौजूद है सारा ही चला जाएगा, सब चला जाता है। जैसे नबी सल्लम के दौर में हज़रत खदीजा का सब चला गया, जो बड़े बड़े सहाबा थे अब्दुर्रहमान बिन औफ खाली हाथ हिजरत करके पहुँचे। कहा अब्दुर्रहमान क्या लेकर आए हो? कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत लेके आए हो। क्यों, क्या हुआ? कहा जब मक्का से निकलने लगा, बीवी बच्चे माल साथ था, तो फिर क्या हुआ? कहने लगे कि ससुराल वाले खड़े हो गए सामने, कहने लगे ये हमारी बेटी है, तुम्हें इसलिए नहीं दी थी कि इसको गली गली फिराओ, वापस करो, या इस्लाम छोड़ो या इसको छोड़ो। कहा अच्छा जी, ले लीजिए आप इसको। उन्होंने बेटी को रोक लिया। जब बेटी रुक गई तो बीवी गई, थोड़ा चंद कदम आगे गया तो अपने घर वाले आ गए, बाप दादा जो भी, कहने लगे बच्चा हमारी नस्ल है, तेरा नहीं है, ये हमारा ख़ानदान का चश्मो चिराग है, ये बच्चा दे दे। ले लो भैया आप ले लो, आप भी तो दयाल वाले, आप पाल लो। वो भी दे दिया। चार कदम आगे गए तो भाई आ गए, ए अब्दुर्रहमान ये पैसा हमने मिलके कमाया हुआ है, इसलिए नहीं दिया था कि इसको छोड़ के आगे जाओ, रुको तो 100 दफ़ा रुको, जाते हो तो पैसा दे दो। कहा पकड़ो ये पैसों की गठड़ी। और वापस जब आए तो तन पे कमीज़ भी पूरी नहीं थी। और अल्लाह के नबी ने जब ये वाक़या सुना तो आपने कहा कि अब्दुर्रहमान तूने नफ़े का सौदा किया। ईमान सब कुछ ले ले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि हम पीछे हों, सब दे दीजिए, आजमाने के लिए दे दीजिए कि अल्लाह मेरा सब ले, जैसे अबू बकर से लिया। एक वक्त आए मेरे पास कुछ भी ना हो, वल्ला ही चंद माह के बाद उससे ज़्यादा होगा आपके पास। जिसने अल्लाह के रस्तों में दिया, फिर जो उसको मिला वो संभाल नहीं सका, इसी को हिजरत कहते हैं। और अगर आपने ये चखी नहीं है ना, तो मेरी बात आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और आपका दिल मानेगा भी नहीं। चलती काम छोड़ कर आइए अल्लाह के लिए, चलता बसता हंसता घर छोड़ के निकली अल्लाह के लिए, कि अल्लाह तेरे लिए इन्नी मुहाजिर निला रबी, जा रहा हूँ अल्लाह के नाम पे। जब तक ये हिजरतें और कुर्बानियाँ नहीं होती, ईमान के दावे झूठे, ऐसे नहीं मिलता कुछ भी, इसके पीछे बहुत मुजाहदे होते हैं। और अगर आपने मैंने अभी कुर्बानी और हिजरतों के बाब नहीं पढ़े, तो हम इस ईमान के मज़ों को चख ही नहीं सकते कि ज़ाका तामुल ईमान। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसने ईमान का जायका चख लिया, जो अल्लाह की रज़ा पे राजी है, जिसको अल्लाह से अच्छी उम्मीदें हैं, बस इतना कह लें। और फिर अल्लाह देखिए उनके लिए इंतज़ाम गार में सो दें, लोगों को नरम गद्दों पर नींद नहीं आती, ट्रैंक्लाइजर्स खा खा के नींद नहीं आती, डिप्रेस्ड लोगों को जब तक नींद की गोली ना दें वो सोते नहीं हैं। क्या गद्दा था इनका, मैट्रेस किस क्वालिटी का था, पिलो कौन सा था इनका, रूम टेम्परेचर कितना सेटल था। आज मैंने कई लोगों से सुना, कहते हैं हमारा तो तकिया बदल जाए तो हमें नींद नहीं आती। और ये मुझसे कब पूछते हैं, जब वो देखते हैं हम ट्रैवलिंग करते हैं कभी इधर कभी उधर। मेरी अपनी वालदा मुझे कहती हैं तुम कैसे कर लेती हो, वो उनका हाल ये कि वो अपने कमरे से किसी दूसरे के कमरे में अगर सो जाए ना, तो सारी रात उनको नींद नहीं आती, जी मेरा बिस्तर ठीक नहीं था, मेरा तकिया ठीक नहीं था। कभी सोचा ही नहीं, मकसद की धुन बंदे को याद ही नहीं रखते, तकिया है भी कि नहीं, एक दिन दो होते हैं, दूसरे दिन एक भी नहीं होता, एक दिन ज़मीन पे होते हैं, एक दिन बेड पे होते हैं, एक दिन महल में, एक दिन बड़े महल नुमा कमरे में होता है, दूसरे दिन किसी आप छोटे से क्लोजेट में सो सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मैं और आप इस दुनिया में अपने जिस्म के आराम के लिए आए हैं? याद रखिए मकसद की धुन बंदे को हर किस्म के हालात से बेनियाज करती है। मसलन छोटी सी मिसाल दे देती हूँ, आप बड़े शौक़ से अपने मैके वालों के लिए खाना पका रही हैं, क्योंकि मैके वालों के लिए मैं शौक़ से पकता है, ससुराल के लिए तो मजबूरियों से ही पकता है, इल्ला माशाल्लाह खैर, ये तो वैसे मैंने आपको प्यार से कह दिया। दोस्तों के लिए बना रही हैं, जो भी हैं, कितनी दफ़ा छुरी लगती है हाथ में, प्याज काटते हुए भी लग जाती है कभी, आलू भी कटते कटते उंगली का कट गया, पता ही नहीं, याद ही नहीं, क्यों धोना है? अब उस वक्त कौन पट्टी बांधे, कौन अपने नखरे देखे, वो छोड़ो छोड़ो। और सारी दर्दें कब याद आती हैं? जब रात को बिस्तर पे लेटते हैं। आपको छोटी सी खुशी ने बेसुध कर दिया। आप परेशान हैं, गिरते पड़ते चोटे खाते हैं, काम कर रहे हैं, सफाइयाँ भी कर रहे हैं, खाने भी लगा रहे हैं, क्योंकि फिक्र है। कई दफ़ा तो औरतों के हाथ जलते हैं बेचारियों के, फिक्र ही कोई नहीं। जब घर आके बैठते हैं फिर याद आता है, लिख ले। ये जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह के रस्तों में मुश्किलें हैं, मैं कहती हूँ अभी इनको वो मस्ती नहीं आई। वो दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। अभी इनको अपनी होश है, इसलिए इनको समझ नहीं आ रही ये बात। वरना बेहोश बंदे को कोई नहीं याद रहता मुझे क्या मिला, और अल्लाह ने इनको कितना सुला दिया। आगे देखिए, सुम्मा बस ना हो, फिर हमने उठा दिया। यहाँ ऐसे नहीं लग रहा इधर सोए इधर उठ गए, हालांकि इसके बीच में कितने साल हैं। आगे इसकी डिटेल आएगी, अल्लाह को भी अंदाज चाहिए। ये शुरू की आयतों में हमें कॉम्प्रीहेंसिव सा इसका वर्जन मिल रहा है, और आगे आप देखिएगा अंदर का माहौल दिखाया जाएगा। मैं भी चाहूंगी किसी तरतीब के साथ हम चलते जाएं। सुम्मा बस ना हम ही ने उठाया, इस लफ्ज़ पे नोट कीजिए। कौन उठाता है आपको मुझे? तो क्या दुआ पढ़ते हैं सुबह उठते ही? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना याहयाना। सच बताएं, कोई सोया बंदा खुद से उठ सकता है? अलार्म लगा ले, कोई दूसरा उठा दे, फिर भी अल्लाह की रहमत से बंदा उठता है। सुम्मा बस ना हो, लेकिन याद रखिए एक दिन हम नहीं उठेंगे, हम फिर आगे जाके उठेंगे। हमारी एक बड़ी अच्छी साथी है, बड़ा शौक था, अरमान था घर बनाने का, शौहर को भी क्रेज़ था, बड़ा जहाज जितना घर, जिस मुल्क में उसके हिसाब से बहुत बड़ा घर बनाया। बस वो भी घर भी पूरा नहीं हुआ, पीछे भी अभी कुछ काम थे या कुछ अरसा गुजरा। सुबह उठ के चाय मांगते थे, और ये कहती हैं कि आज चाय नहीं मांगी। तो ये चाय बनाकर उनके कमरे में आती हैं और रखी, जो भी कहानी हुई होगी, किस्सा मुख्तसर, ये रात के सोए वो सो चुके थे। चीख निकल गई उनको देख करके, वो तो हिले ही नहीं अपनी जगह से। कहती, ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ कि सुबह उठते इतने बजे चाय ना पियो, लेकिन उस दिन चाय से पहले चले गए। जो मर्जी कर लीजिए, सुम्मा बस ना, उठाता वही है जिसने सुलाया है। लीना आलमयुल हिस्बैन यहसा लिमा लबिसू अमदा, ताकि हम देखें कि दो गिरोहों में से किसको बेहतर मालूम है कि कितना अरसा वो वहां रहे थे। ये दो गिरोह कौन है? ये आगे आएंगे, तारीख लिखने वाले हिस्टोरियंस, क्योंकि बाज़ वह लोग फिर फिगर एंड फैक्ट्स पे बड़े जुमले देते। बस अल्लाह कहते हैं हमने उनको फिर उठा दिया, ठीक है, हो गया। चलिए, ये तो आयतों में क्या थी? तमहीद। अब असल किस्सा बिल्कुल सूरज यूसुफ वाला अंदाज है।